एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी शख्सियत के जीवन और विचारों में गहराई से उतर रहे हैं जिनकी कहानी आप देखें तो आज भी उतनी ही मायने रखती है जितनी पिछली सदी में रखती थी।
हाँ, बिल्कुल।
हम बात कर रहे हैं एलेनोर रोजवेल्ट की आत्मकथा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एलेनोर रोजवेल्ट के बारे में। ये किताब 1961 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी
जी,
और ये उनके पहले के संस्मरणों और विचारों का एक, कह सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली संकलन है। कई लोग इसे अमेरिकी राजनीतिक साहित्य की सबसे दिलचस्प व्यक्तिगत कहानियों में से एक मानते हैं।
हाँ, और ये सिर्फ एक किताब नहीं जैसा आपने कहा, बल्कि तीन किताबों का सार है। दिस इज माई स्टोरी, दिस आई रिमेम्बर और ऑन माई ओन, और साथ में एक आखिरी अध्याय भी है जो उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले लिखा था।
अच्छा,
तो ये एक पूरी जिंदगी का नक्शा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें दिखाती है कि इंसान मतलब चाहे तो क्या कुछ हासिल कर सकता है।
और जिनकी ये यात्रा है एना एलेनोर रूजवेल्ट, वो कोई आम महिला तो थी नहीं। अमेरिकी राजनीति में उनका कद बहुत ऊंचा था, एक नेता, राजनयिक, कार्यकर्ता और हाँ, अमेरिका की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रथम महिला भी।
बिल्कुल, उनके पति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के चार कार्यकाल थे, 1933 से 1945 तक, और इस दौरान एलेनोर ने प्रथम महिला की भूमिका को आप कह सकती हैं एक नई ही परिभाषा दे दी।
सही कहा, और बात सिर्फ प्रथम महिला होने तक ही सीमित नहीं रही है ना। फ्रैंकलिन की मृत्यु के बाद भी उनका सार्वजनिक जीवन रुका नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं रुका। वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रतिनिधि बनी और फिर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष। उस भूमिका में तो उन्होंने सचमुच इतिहास रच दिया। लेकिन मुझे लगता है उनकी कहानी का असली जादू इस बात में है कि कैसे एक बेहद शर्मीली, थोड़ी असुरक्षित सी लड़की।
हाँ, ये डर पर काबू पाने और खुद को मतलब दोबारा गढ़ने की कहानी है। कैसे निजी जिंदगी की मुश्किलें और गहरा आत्मसंदेह उसे सार्वजनिक जीवन के उद्देश्य और दुनिया भर में असर डालने वाली ताकत में बदला जा सकता है।
हाँ, और इसीलिए आज भी ये प्रासंगिक है।
हाँ, आज भी जब बहुत से लोग आत्मसंदेह से, डर से या अपने उद्देश्य की तलाश से जूझते हैं, एलेनोर की कहानी एक उम्मीद जगाती है। तो चलिए उनकी इस असाधारण यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं।
जरूर, उनकी कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के बहुत ही, कह सकते हैं, ऊंचे तबके में। रूजवेल्ट और लिविंगस्टन परिवार दोनों ही बड़े नाम थे। 11 अक्टूबर 1884 को उनका जन्म हुआ। अब देखिए, ऊपरी तौर पर तो सब कुछ था, पैसा, रुतबा,
जिसे कहते हैं सोने का पिंजरा।
हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन भावनात्मक तौर पर उनका बचपन बहुत सूखा और ठंडा था। उनकी माँ एना हॉल रूजवेल्ट उस जमाने की मशहूर सुंदरियों में थी, लेकिन उन्हें अपनी बेटी एलेनोर का सादापन, उसका गंभीर स्वभाव, वो पसंद नहीं था। वो मजाक में उसे ग्रैनी यानी बुढ़िया कहकर बुलाती थी।
ओह, ये तो सुनकर ही दुख होता है। माँ से ऐसी बात सुनना किसी भी बच्चे के लिए कितना मुश्किल होता होगा।
बहुत ज्यादा। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जब एलेनोर सिर्फ 8 साल की थी, उनकी माँ की डिप्थीरिया से मौत हो गई, और फिर 2 साल के अंदर ही उनके पिता इलियट रूजवेल्ट, जिनसे एलेनोर को बहुत प्यार था लेकिन वो शराब की लत के शिकार थे,
हाँ,
उनकी भी मृत्यु हो गई। तो सोचिए, 10 साल की उम्र में वो पूरी तरह अनाथ हो गई।
कल्पना करना भी मुश्किल है।
इसके बाद उनका पालन पोषण हुआ उनकी नानी मैरी लुडलो हॉल के घर में। वो माहौल भी बहुत सख्त, उदास और भावनाओं से रहित था। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं उस छोटी सी बच्ची के अकेलेपन का, उसकी गहरी असुरक्षा का। वो खुद को लगातार कमतर आंकती थी।
लेकिन यहीं से शायद कुछ और भी शुरू हुआ होगा।
हाँ, ये एक दिलचस्प बात है जो शायद उनके जीवन की पहली बड़ी सीख भी है।
यही अकेलापन और बाहरी होने का एहसास था जिसने बाद में उनके अंदर गहरी सहानुभूति पैदा की। हाशिए पर होने का ये जो निजी अनुभव था ना, उसी ने उन्हें जिंदगी भर हाशिए पर पड़े लोगों के हक के लिए लड़ने की ताकत दी। कह सकते हैं उनका दर्द ही उनकी ताकत बन गया।
ये वाकई अद्भुत है कि कैसे शुरुआती मुश्किलें चरित्र को घड़ सकती हैं।
उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव तब आया जब 15 साल की उम्र में उन्हें इंग्लैंड के एलन्सवुड एकेडमी भेजा गया। ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कोई खिड़की खुल गई हो।
बिल्कुल, ये उनके लिए एक जागरण जैसा था। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस मैरी सॉविस्ट्रे एक असाधारण महिला थी, प्रगतिशील, स्वतंत्र सोच वाली। उन्होंने एलेनोर की बौद्धिक क्षमता को पहचाना और उसे बढ़ावा दिया। शायद पहली बार एलेनोर को उनकी बाहरी सुंदरता के बजाय उनकी बुद्धि और विचारों के लिए सराहा गया।
अच्छा,
मैरी सॉविस्टर ने उनमें सामाजिक चेतना जगाई, दुनिया के मुद्दों पर सोचने के लिए प्रेरित किया।
और इसका नतीजा क्या हुआ? क्या इसी माहौल ने उस शर्मीली लड़की को बदलना शुरू किया?
हाँ, बिल्कुल। एलेनसवुड में एलेनोर का आत्मविश्वास जागा, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता उभरी, उन्होंने फ्रेंच भाषा सीखी और सबसे बढ़कर उनमें सामाजिक जिम्मेदारी की एक गहरी भावना विकसित हुई। जैसा उन्होंने खुद बाद में लिखा भी, यही मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरा अपना दिमाग है। ये उनके आत्मनिर्माण की कह सकते हैं नींव थी।
लेकिन फिर वो न्यूयॉर्क वापस आईं और समाज की जो पारंपरिक उम्मीदें थीं उनका सामना तो करना पड़ा होगा।
हाँ, वो तो था।
1905 में उनकी शादी अपने दूर के चचेरे भाई फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट से हुई। शुरुआत में तो वो पत्नी और माँ की पारंपरिक भूमिका में ही सिमट गईं। उनके 6 बच्चे हुए, जिनमें से एक बचपन में ही गुजर गया, और ऊपर से उनकी सास सारा डिलानो रूजवेल्ट, उनका व्यक्तित्व भी काफी हावी रहने वाला था। ऐसा लगता है कि एलेनसवुड में जो आत्मविश्वास जागा था वो फिर से कहीं दबने लगा था।
हाँ, कुछ समय के लिए ऐसा हुआ जरूर, लेकिन फिर दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उनके जीवन की दिशा मतलब हमेशा के लिए बदल दी। इन्हें हम उनके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ कह सकते हैं।
अच्छा, कौन से?
पहला मोड़ आया 1918 में। तब उन्हें पता चला कि फ्रैंकलिन का उनकी अपनी सामाजिक सचिव लूसी मर्सर के साथ अफेयर चल रहा है। ये उनके लिए एक जबरदस्त भावनात्मक झटका था। उनका जो एक रोमांटिक सपना था शादी को लेकर, वो टूट गया।
ये तो किसी के लिए भी बहुत मुश्किल स्थिति होगी। उन्होंने क्या किया फिर? क्या उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया?
नहीं, उन्होंने तलाक नहीं लिया, शायद फ्रैंकलिन के राजनीतिक भविष्य और बच्चों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन उस दिन से उनके रिश्ते की जो भावनात्मक बुनियाद थी वो हिल गई। शादी अब एक रोमांटिक बंधन से ज्यादा एक राजनीतिक और पारिवारिक साझेदारी बन गई थी। लेकिन इस गहरे व्यक्तिगत दर्द से एक और चीज निकली, एक तरह की मुक्ति। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पहचान, अपनी खुशी सिर्फ इस रिश्ते पर निर्भर नहीं रखनी है। यहीं से उन्होंने, जिसे बाद में उन्होंने अपना खुद का मचान बनाना कहा, उसकी शुरुआत की।
अपना मचान बनाना मतलब
अपने दोस्त, अपने उद्देश्य, अपनी गतिविधियां खुद बनाना, अपने पैरों पर खड़ा होना भावनात्मक रूप से। ये दर्दनाक था, पर इसने उन्हें स्वतंत्र होने का रास्ता दिखाया।
और दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ कौन सा था?
वो था 1921 में, जब फ्रैंकलिन को पोलियो हो गया और वो कमर से नीचे लकवाग्रस्त हो गए। अचानक से फ्रैंकलिन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया।
हाँ, बिल्कुल।
तब एलेनोर आगे आई। फ्रैंकलिन के राजनीतिक सलाहकार थे लुई होवे। उनके जोर देने पर उन्होंने सार्वजनिक भाषण देने के अपने गहरे दर पर काबू पाया। वो फ्रैंकलिन की आंखें और कान बनकर जनता के बीच जाने लगी।
मतलब पति की मजबूरी ने उन्हें सार्वजनिक मंच पर ला खड़ा किया?
एक तरह से हाँ, लेकिन ये सिर्फ मजबूरी या कर्तव्य नहीं था। उन्होंने जल्दी पाया कि उन्हें ये काम पसंद आ रहा है। वो महिला ट्रेड यूनियन लीग और डेमोक्रेटिक पार्टी में सक्रिय हुई, लोगों से मिली, उनकी समस्याएं सुनी और अपना खुद का एक राजनीतिक नेटवर्क बनाया। उन्होंने पाया कि उनमें लोगों को समझने और उनसे जुड़ने की एक स्वाभाविक प्रतिभा है। सार्वजनिक जीवन उनका जुनून बन गया।
और फिर 1933 में जब फ्रैंकलिन राष्ट्रपति बने, तो एलेनोर रूजवेल्ट ने प्रथम महिला के पारंपरिक रोल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो सिर्फ व्हाइट हाउस की मेजबान नहीं रहीं।
बिल्कुल नहीं, वो एक सक्रिय राजनीतिक खिलाड़ी बन गईं, पार्टनर बन गईं। उन्होंने देश भर में घूमना शुरू किया। वो कोयला खदानों में गईं, गरीब किसानों से मिलीं, पिछले इलाकों के स्कूलों का दौरा किया।
सीधे लोगों के बीच?
हाँ, सीधे लोगों से जुड़कर उनकी बातें सुनती थीं और फिर फ्रैंकलिन तक पहुँचाती थीं। उन्होंने अपना एक अखबार कॉलम माई डे शुरू किया, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। उसमें वो रोजमर्रा की बातों से लेकर गंभीर सामाजिक मुद्दों पर खुलकर लिखती थी। उनके विचार सीधे देशभर के लाखों पाठकों तक पहुंचते थे।
और उन्होंने महिला पत्रकारों के लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। ये भी काफी क्रांतिकारी कदम था उस समय के हिसाब से।
हाँ, बिल्कुल। इससे महिला पत्रकारों को व्हाइट हाउस की खबरों तक सीधी पहुंच मिली, जो पहले नहीं थी। और वो नागरिक अधिकारों की एक जबरदस्त पैरोकार थी। इसका सबसे मशहूर उदाहरण शायद 1939 का है,
मैरियन एंडरसन वाला मामला।
हाँ, वही, जब डॉटर्स ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन नाम की संस्था ने अपनी बिल्डिंग में अफ्रीकी अमेरिकी गायिका मैरियन एंडरसन को गाने की इजाजत नहीं दी। एलेनोर ने विरोध में तुरंत DAR से इस्तीफा दे दिया और मैरियन एंडरसन के लिए लिंकन मेमोरियल पर एक ऐतिहासिक कॉन्सर्ट आयोजित करवाने में मदद की। ये उनके नैतिक साहस का प्रतीक था।
फिर अप्रैल 1945 में फ्रैंकलिन की मृत्यु हो गई। एलिनॉर ने उस वक्त कहा था कहानी खत्म हो गई है, उन्हें लगा होगा कि उनका सार्वजनिक जीवन अब समाप्त हो गया।
हाँ, उन्होंने ऐसा ही सोचा था, उन्हें लगा कि अब सब खत्म, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। असल में उनके जीवन का शायद सबसे प्रभावशाली अध्याय तो अब शुरू होना था।
अच्छा।
राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने उन्हें उसी साल दिसंबर में नवगठित संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। कई लोगों को संदेह था कि वो इस भूमिका में सफल हो पाएंगी, एक महिला के तौर पर भी और बिना फ्रैंकलिन के, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी समझदारी और अपने नैतिक बल से जल्दी सबका सम्मान जीत लिया।
और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि वही संयुक्त राष्ट्र में आई है ना, मानवाधिकारों को लेकर।
बिल्कुल, उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया और वो 1948 में अपनाई गई सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR को तैयार करने और पास करवाने वाली सबसे प्रमुख शक्ति थी। ये दस्तावेज आज भी दुनिया भर में मानवाधिकारों का आधार माना जाता है।
ये तो बहुत बड़ी बात है।
हाँ, और सोचिए, वो शीत युद्ध का मुश्किल दौर था, अलग अलग विचारधाराओं वाले देशों के बीच सहमति बनाना कितना मुश्किल रहा होगा, उन्होंने वो अविश्वसनीय काम कर दिखाया।
तो फ्रैंकलिन की छाया से पूरी तरह निकलकर वो अपने आप में एक वैश्विक नेता बन गई।
सही कहा आपने, बाद के सालों में भी वो लगातार सक्रिय रहीं, दुनिया भर में घूमकर मानवाधिकारों और लोकतंत्र की वकालत करती रहीं, लिखती रहीं, भाषण देती रहीं। 1962 में अपनी मृत्यु तक वो एक अथक आवाज बनी रहीं। उनकी विरासत बहुत बड़ी है। उन्होंने प्रथम महिला की भूमिका को बदला, वो UDHR की मुख्य शिल्पी थीं, उन्होंने नागरिक अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और वो व्यक्तिगत बदलाव और नैतिक नेतृत्व की एक मिसाल बन गई।
इस असाधारण यात्रा को देखते हुए उनके मूल दर्शन या जीवन मूल्यों के बारे में क्या कहा जा सकता है, मतलब क्या चीज थी जो उन्हें चलाती थी?
उनका दर्शन व्यावहारिक आदर्शवाद कहा जा सकता है, मतलब वो आदर्शों में विश्वास रखती थी लेकिन उन्हें जमीनी हकीकत से जोड़कर देखती थी। सिर्फ बातें नहीं, काम, कर्तव्य, सहानुभूति और लोकतंत्र में गहरी हास था, ये उनके काम की बुनियाद थी। वो मानती थी कि अगर आपको जन्म से कुछ विशेषाधिकार मिले हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप दूसरों की सेवा करें।
और उनका दुनिया को देखने का नजरिया कैसा था?
वो प्रत्यक्ष अनुभव में बहुत विश्वास रखती थी। उनका सिद्धांत था जाकर खुद देखना। सिर्फ रिपोर्टें पढ़ने के बजाय वो खुद उन जगहों पर जाती थीं, लोगों से मिलती थीं। उनका मानना था कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सभी नागरिक सक्रिय हों, सूचित हों और एक दूसरे के प्रति दयालु हों। मानवीय संपर्क, लोगों का आपस में मिलना जुलना, यही पूर्वाग्रह और नफरत का सबसे बड़ा इलाज है, ऐसा वो मानती थीं।
और उनकी मूल मान्यताएं क्या थीं जिस पर वो टिकी रहीं?
सबसे बुनियादी मान्यता तो यही थी कि हर इंसान का महत्व है, चाहे उसकी जाति, वर्ग, लिंग या राष्ट्रीयता कुछ भी हो, हर कोई बराबर है।
और दूसरी बड़ी बात?
डर। वो डर को प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। उनका वो मशहूर कथन याद है?
हाँ, कोई भी आपकी सहमति के बिना आपको हीन महसूस नहीं करा सकता।
बिल्कुल, ये इसी विश्वास से निकला था। हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर ना लगे, हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद सही कदम उठाना।
उनकी पूरी जिंदगी ही बदलावों और सबक से भरी लगती है, लेकिन अगर हमें तीन सबसे निर्णायक मोड़ चुनने हों जिन्होंने उनकी दिशा पूरी तरह बदल दी, तो वो कौन से होंगे? ऐसे पल जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो बनी।
ये चुनना मुश्किल है क्योंकि कई मोड़ थे, पर मेरे हिसाब से पहला निर्णायक मोड़ निश्चित रूप से एलन्सवुड अकेडमी 1999-1902 में उनका जाना था,
इंग्लैंड वाला स्कूल।
हाँ, 15 साल की उस शर्मीली लड़की का उस प्रगतिशील स्कूल में पहुंचना जहां मैरी सोवेस्ट्रे जैसी गुरु मिली, उनके लिए जीवन बदलने वाला था। वो पहला माहौल था जहां उन्हें उनकी बुद्धि और विचारों के लिए पहचाना गया, न कि उनकी शक्ल सूरत या परिवार के नाम के लिए। सोवेस्ट्रे ने उनमें स्वतंत्र सोच, सामाजिक चेतना और सबसे जरूरी आत्मविश्वास की नींव डाली। ये वो जगह थी जहां ग्रैनी नाम की छाया से निकलकर एलिनोर ने खुद को खोजना शुरू किया।
हाँ, ये तो वाकई उनके आत्मविश्वास की बुनियाद बना होगा। दूसरा मोड़ कौन सा था?
दूसरा मोड़, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, फ्रैंकलिन के अफेयर 1918 का पता चलना था। ये व्यक्तिगत रूप से बहुत दर्दनाक था, इसने उनके वैवाहिक जीवन के रोमांटिक पहलू को कह सकते हैं खत्म कर दिया।
हाँ।
लेकिन जैसा हमने समझा, इसी दर्द ने उन्हें पारंपरिक पत्नी की भूमिका से एक तरह से मुक्त किया। इसने उन्हें मजबूर किया कि वो अपनी पहचान, अपनी संतुष्टि घर की चार दीवारी के बाहर खोजें। यहीं से उन्होंने अपना स्वतंत्र सामाजिक और राजनीतिक दायरा बनाना शुरू किया, अपना खुद का मचान खड़ा किया। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत त्रासदी भी मतलब अप्रत्याशित रूप से विकास का दरवाजा खोल सकती है।
और तीसरा शायद सबसे महत्वपूर्ण मोड़, उनके अपने स्वतंत्र कद के लिहाज से, जब वो सिर्फ एलेनोर रूजवेल्ट थी।
मेरे विचार में तीसरा सबसे अहम मोड़ था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता करना 1946 से 1952, फ्रैंकलिन की मृत्यु के बाद, जब कई लोगों ने सोचा कि उनका सार्वजनिक जीवन खत्म हो गया, तब उनका संयुक्त राष्ट्र में जाना और मानवाधिकार घोषणा जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज को गढ़ने वाली समिति का नेतृत्व करना,
हाँ।
ये उनके अपने दम पर एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित होने का पल था। ये उनके पति के विरासत से पूरी तरह अलग उनकी अपनी उपलब्धि थी। इसने साबित किया कि वो शर्मीली असुरक्षित लड़की अब दुनिया के लिए नैतिक दिशा दिखाने वाली एक आवाज बन चुकी थी, पूरी तरह से अपनी शर्तों पर। ये उनके जीवन भर के विश्वासों का शिखर था, कह सकते हैं।
इन मोड़ों को देखते हुए एलेनोर रूजवेल्ट के जीवन से हम आम इंसान क्या सीख सकते हैं? ऐसे कौन से सबक हैं जो आज भी हमारे काम आ सकते हैं?
अरे बहुत सारे सबक हैं। सबसे पहला तो यही कि व्यक्तिगत बदलाव किसी भी उम्र में संभव है। उन्होंने बचपन के गहरे सदमों पर काबू पाया और जीवन भर खुद को बेहतर बनाती रहीं। कभी भी ये सोचना कि अब कुछ नहीं बदल सकता, ये बिल्कुल गलत है।
और ये भी कि कैसे गहरे व्यक्तिगत दर्द को सहानुभूति और दूसरों की मदद करने की ताकत में बदला जा सकता है ना।
अक्सर लोग अपनी तकलीफों में ही उलझे रह जाते हैं।
हाँ बिल्कुल।
लेकिन उन्होंने अपनी असुरक्षाओं पर ध्यान देने के बजाय दूसरों की जरूरतों पर ध्यान दिया। शायद दूसरों की सेवा करना ही खुद को ठीक करने का एक रास्ता है।
बिल्कुल सही कहा। और साहस के बारे में उनकी सोच, साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद वो काम करना है जो जरूरी है।
उनका वो मंत्र, आपको वो काम करना चाहिए जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, ये आज भी उतना ही शक्तिशाली है। हमें अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा अगर हम वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं।
उनके नेतृत्व का तरीका भी मतलब काफी अलग था, पद से ज्यादा उनके नैतिक अधिकार का वजन था।
हाँ, उनका नेतृत्व सत्ता या पद पर आधारित नहीं था, बल्कि उनकी ईमानदारी, उनकी सेवा और उनकी हिम्मत पर आधारित था। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति के छोटे छोटे कदम भी, जैसे DAR से इस्तीफा देना या किसी दूरदराज की कोयला खदान में जाना, बड़े बदलाव ला सकते हैं। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि प्रामाणिकता और सेवा में कितनी ताकत होती है।
और आज के समय में जब दुनिया में इतना विभाजन है, लोग आत्मसंदेह से जूझते हैं, अपने उद्देश्य को लेकर भ्रमित रहते हैं, एलेनोर की कहानी शायद और भी ज्यादा मायने रखती है।
निश्चित रूप से उनकी कहानी हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने, सहानुभूति रखने और छोटे छोटे कामों से ही सही पर दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है। ये बहुत जरूरी है आज।
तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद अगर हमें तीन मुख्य बातें याद रखनी हो, तीन अंतिम निष्कर्ष निकालने हो, तो वो क्या होंगी?
ठीक है। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि कह सकते हैं। गहरे व्यक्तिगत घाव, जैसे बचपन में मिला तिरस्कार या अकेलापन, अगर सही दिशा दी जाए तो गहन सहानुभूति और दूसरों की सेवा करने की असाधारण ताकत में बदल सकते हैं। दर्द को विनाशकारी होने देने के बजाय रचनात्मक बनाया जा सकता है।
बिल्कुल। और दूसरी?
दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। असली नेतृत्व का प्रभाव अक्सर औपचारिक पद या ताकत से नहीं, बल्कि नैतिक विश्वसनीयता और लगातार सही काम करने से पैदा होता है। एलेनोर ने प्रथम महिला की पारंपरिक भूमिका को अपने चरित्र और सेवा भाव से नहीं परिभाषा दी। प्रभाव पदवी से नहीं, व्यक्तित्व से आता है।
सही कहा। और तीसरी?
और तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। साहस डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कदम उठाने का लगातार अभ्यास है। जैसा उन्होंने कहा, वो काम करो जो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते। चुनौतियों का सामना करके ही जीवन भर व्यक्तिगत विकास संभव है। डर के आगे जीत है, पर उसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नए विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्सेस फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।